SBS हिंदी।
दोस्तों, करियर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और ख़ास करके जब हम करियर में कुछ नए ऑप्शन के तलाश करें, कुछ रोमांचक, कुछ एक्साइटमेंट करियर के लिए सोचें, तो सेना, डिफेंस फोर्सेस, उससे ज़्यादा रोमांचक और एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो चलिए आज आप इसे बताते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नेवी। जी हाँ, हमारी जो नौसेना है उसमें आपके करियर के लिए, आपकी कारकिर्दी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके लिए हमें जानकारी दे रही हैं नेवल ऑफिसर कमला शर्मा विंग। कमला जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए, थैंक यू।
कमला जी, यहाँ पर जब नए नए लोग होते हैं या फिर करियर के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट कम्युनिटी है, अपने देश में तो अपने डिफेंस फोर्सेस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मोटे मोटे तौर पर डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप ब्रीफ शेयर कर सकती हैं अबाउट ऑस्ट्रेलियन डिफेंस?
डेफिनेट, जरूरी जरूर। तो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में तो ऑफकोर्स वहाँ होती है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। लगभग उनमें से परमानेंट और रिजर्व दोनों को काउंट करने से अबाउट 80,000 है। तो नेवी में उसमें से 14,000 परमानेंट है। तो रिजर्व का मतलब होती है कि आप नेवी में हो या एयरफोर्स आर्मी, पार्ट टाइम काम करेंगे या तो 28 डेज अ ईयर और लॉन्गर, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा कैटेगरी, कौन सा ब्रांच में हो। तो मैं अभी जितने भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये ज्यादातर परमानेंट नेवी के लिए है, और परमानेंट नेवी के अलावा वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट भी है जो सिविलियन के तौर पे नेवी में काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर भी होती है। तो नेवी इट्सेल्फ में वहाँ पे पोस्टिंग होती है, या लैंड में हो या सर्फेस शिप्स यानी बड़ी बड़ी शिप्स में, और या हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन, वो तीनों पे होते। और वहाँ पे ऑफिसर्स एक कैटेगरी होती है, कमीशन ऑफिसर्स, और सेलर्स यानी नॉन कमीशन ऑफिसर्स दूसरे ग्रुप होती है।
तो आपने बताया कि दो अलग अलग तरीके से आप डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली नेवी में करियर बना सकते हैं, एज ए सिविलियन के तौर पर भी बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपको मिल सकती हैं। सो आप बताइए कि अगर हम नेवी को ही स्पेशल टारगेट करके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखें, तो क्या आप बता सकती हैं कि कौन कौन से रोल अवेलेबल होते हैं और हर एक रोल में क्या क्या करना होता है?
दो स्ट्रीम है नेवी विद इन, सो परमानेंट नेवी में, सो एक है कमीशन ऑफिसर और एक है नॉन कमीशन सेलर्स। तो मैं पहले आपको सेलर्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है वो बताती हूँ। तो सेलर्स में दो कैटेगरी होती है, एक है टेक्निकल और दूसरी है नॉन टेक्निकल। सो नॉन टेक्निकल कैटेगरी में होती है कि जॉब्स लाइक शेफ, क्लर्क्स, जैसे वेयरहाउस स्टोर्स में काम करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी, IT, logistics support, as well as medical assistant, dental assistant, linguistic area, combat systems operator, police, musician, aviation ground. So, जैसे कि जितने भी लोग चाहिए शिप को लेके दूर जाना हो वो सब नॉन टेक्निकल एरिया में आती है। दूसरी होती है टेक्निकल एरिया, उसमें होती है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और या एवियोनिक्स टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और मरीन टेक्नीशियन। उसके साथ में अगर आप सबमरीन में जा रहे हो तो सबमरीन की अलग से ट्रेनिंग भी होती है। तो दीज आर द मेन एरिया फॉर सेलर्स। और दूसरी होती है कमीशन ऑफिसर्स। सो कमीशन ऑफिसर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, एक है कि अगर आप क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड एंट्री, सो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसमें एक वो है। दूसरी होती है कि आपको जैसे आपने 12 क्लास खत्म किया हो तो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी यानी एडफा कहते हैं, वहाँ भी एक तरीका है जाने के लिए, आपको मैं अभी डिटेल में बता रही। और दूसरा होती है ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहाँ पे आप अपनी पहले से डिग्री ली हो तो वहाँ पे होती है। द टाइप ऑफ जॉब आप इनमें से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या मरीन इंजीनियर या एरोस्पेस इंजीनियर, चैपलन, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, लॉयर, ट्रेनिंग सिस्टम्स, जहाँ पे अगर आप एजुकेशन या टीचिंग में फील्ड हो तो यू कैन बी वन ऑफ दोज एज वेल। सो दोज आर द मेन एरिया फॉर ऑफिसर्स। तो अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, आपको पहले से डिग्री हो, तो इट्स क्वाइट इजी. यू जस्ट गो अप टू द रिक्रूटिंग एंड उन लोग ने काफी टेस्ट वगैरह करके वैकेंसी के अनुसार आपको जॉब मिल सकती है. दूसरा होती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. उसमें अगर आपके 3 या 4 साल की डिग्री हो और 1 साल आपने खत्म किया हो, एज लॉन्ग एज इट्स एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो आप नेवी को अप्लाई कर सकते हैं. और उन लोग ने एक्सेप्ट किया तो आपका डिग्री पूरा स्पॉन्सर कर लेगी, सब खर्चा उन लोग देंगे, आपको सैलरी भी देगी, आपको फ्री डेंटल मेडिकल भी होगी, आपको सब्सिडाइज अकोमोडेशन मिलेगा, आपकी सब टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब देंगे, प्रोफेशनल डिवेलपमेंट होगी और साथ में बाद में गारंटीड जॉब भी मिलेगी. सो ये है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. और दूसरा होती है अगर आप एटफा यानी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अकेडमी में जाना हो, ये कैनबरा में है ये यूनिवर्सिटी, तो इसमें अगर आप 12 क्लास खत्म किया हो अच्छे मार्क्स में, तो आपको 3 या 4 साल की डिग्री कर सकते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या मरीन इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर या इंटेलिजेंस एरिया में या मैरिटाइम वॉरफेयर शिप में या सबमरीन और मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स. सो दीज आर द 3 वेज टू बिकम एन ऑफिसर.
अरे वाह. कमला जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसमें जो कोई भी अप्लाई करता है, क्या उसके लिए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होना कंपलसरी है या परमानेंट रेसिडेंट भी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं?
ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप होना कंपलसरी है, पर अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी है और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेने के लिए इतना दूर नहीं है, बात शायद 2-3 महीने, शायद 6 महीने, आई एम नॉट श्योर 100%, अगर बहुत बात दूर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग जब टेस्टिंग होती है वो सब टाइम लगता है, पेपर वर्क सब टाइम लगती है, तो टाइम तक आपकी सिटीजनशिप आ सकती है, पर ये फॉर्मल प्रोसेसिंग नहीं होगा जब तक ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ना हो.
कमला जी, अगला प्रश्न ये पूछते हैं कि जब नेवी है उसमें क्लाड कम्युनिटी यानी कि जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्स कम्युनिटी है, उसका क्या महत्व है?
तो नेवी में उसका बहुत ही बड़ा महत्व है. पहले की जब मैं ज्वाइन हुई थी तो ज्यादातर लोग एंग्लो सैक्सन ही थे, हम लोग तो मैं कितने सालों तक मैं ही थी, बहुत सालों तक, पर अभी लास्ट 10 ईयर्स इन पर्टिकुलर द लास्ट 5 ईयर्स नेवी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्लैड कम्युनिटीज ज्वाइन हो. उन लोग ने देखा है कि हमारे इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में है वो डाइवर्सिटी हम लोग के वो रिफ्लेक्शन हमारी डिफेंस फोर्स में नहीं है ना, तो अगर हमें डिफेंस फोर्स को आगे बढ़ाना है, क्वालिटी लोग लाना है, तो क्लैड रिप्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सो उसके लिए उन लोग काफी प्रचार करते हैं कि जब भी कोई क्लैड मेंबर्स डिफेंस फोर्स में आए हैं तो उन लोग दे रियली यूज देम टू ट्राई एंड प्रमोट विद इन देयर कम्युनिटी.
तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि क्या महत्व है कल्चरल और जो भाषा की डाइवर्सिटी है, जो विविधता है उसका. तो आप महिला हैं, महिला ऑफिसर हैं, तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ खास स्पेशल प्रोविजंस हैं महिलाओं के लिए?
तो महिला के लिए कि वेदर अगर आप क्लैड कम्युनिटी हो या जस्ट एनी अदर वुमेन, यहाँ पे स्पेशली इन द लास्ट 10 ईयर्स उन लोग ने काफ़ी कोशिश की है कि महिलाओं को सपोर्ट करे, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्स में पहले क्या होती थी कि महिलाएं ज्वाइन होती थी और बाद में जैसे उनके बच्चे हुए दे यूज्ड टू लीव, क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, स्पेशली जब बच्चे छोटे थे तो सपोर्ट नहीं होती थी. पर अभी ऐसा नहीं है ना, जैसे कि अगर उन लोग स्पेशल फैमिली प्रोविजंस होती है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड केयर हो या अगर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑफर करती है ना, जैसे कि अगर आप फुल टाइम काम नहीं कर सके तो पार्ट टाइम काम करें. ऑफकोर्स डिपेंड होती है कि कौन सी पोजिशन है, और ये सी में जाने वाली पोजिशन नहीं होगी, ये सब लैंड बेस्ड पोजिशन होती है. पार्ट टाइम काम करें या घर से वर्किंग फ्रॉम होम या तो वेरिएबल वर्किंग आवर्स की अगर 40 आवर्स हो तो शायद आप वीकेंड यूज करेंगे वो 40 आवर्स वीकडेज नहीं करके, आपको शायद हस्बैंड की सपोर्ट होगी उस वजह से यू वर्क आउट व्हाट आवर्स सूट यू और उतना तक नहीं, अगर आपके पार्टनर हो तो पोस्टिंग के अनुसार पोस्टिंग यहाँ से वहाँ होती है, तो पार्टनर ऑफन वेदर मेल और फीमेल आर द वन टू मिस आउट इन देयर करियर, तो इन लोग पार्टनर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है ना. तो और उसमें नेवी इन पर्टिकुलर दे आर द आई मस्ट से कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार दे आर द चैंपियन फॉर जेंडर इक्वालिटी.
अरे वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जेंडर इक्वालिटी को नेवी में प्रमोट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है. तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो विकल्प मौजूद है, उसके लिए सर्च कहाँ करें?
एड्रेस है www.defensejobs.gov.au या तो फोन नंबर भी है 131901. सो बेस्ट थिंग होगा कि अगर आप इंटरनेट में जाए या नंबर फोन करें तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स की कैसी कैसी जॉब है उसके डिटेल बताएंगे. उसमें पूरा डिटेल में होगा कि कैसा ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में क्या करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज योर एकेडेमिक एंड कैटेगरी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, पोस्टिंग्स कहाँ होती है, हमारी कैसी कैसी शिप्स है, कैसी पे क्या है, अलाउंसेस क्या है. तो वो सब डिटेल वो defensejobs.gov में होगी. तो वहाँ से सबसे पहला सब डिटेल्स मिलेगी. अगर उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट है तो बेस्ट होगा आप वो 131901 नंबर को फ़ोन करें और अपॉइंटमेंट लिए ना. तो रिक्रूटिंग सेंटर्स हम ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पे वो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स की रिक्रूटिंग सेंटर है, वहाँ अगर आप जाके इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं. उन लोग काफ़ी डिटेल में बोलेंगे, सब डिटेल्स देंगे. शुरू में वहाँ पे एक कहते हैं यू डे, तो यू डे में अगर आप जाएंगे तो उन लोग सब इंफॉर्मेशन देंगे और उसके साथ बाकी के प्रोसेस शुरू होगी जिसमें आपकी साइकोलॉजी टेस्टिंग होगी, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, एकेडमिक टेस्टिंग होगी. तो टेस्टिंग करके उन लोग बताएंगे कि आपको डिफेंस फोर्स में कौन सी जॉब सुटेबल होगी एज ए कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर. अगर उसमें कुछ शॉर्टफॉल हो तो उन लोग बताएंगे आप क्या करके इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उसके बाद जैसे आप बातें आगे बढ़ेगी वो आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है. तो उसी हिसाब से आपका फिर मेडिकल डेंटल चेक्स होगा, फिटनेस चेक्स होगा, आपको स्विमिंग करना आना चाहिए. अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, टाइम इतना होती है कि आप जाके खुद सीखते हैं स्विमिंग लेसन ना, स्विमिंग करना इंपॉर्टेंट होती है नेवी के लिए. तो वो सब करके फिर आपको ट्रेनिंग शुरू होगी. अगर आप सेलर बन के जा रहे हैं नॉन कमीशन ऑफिसर तो सब ट्रेनिंग HMS सर्विस मेलबर्न में होती है. सेलर्स की ट्रेनिंग आई थिंक इट्स 12 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग. उसके बाद फिर आपने जिस कैटेगरी चूज किया है उस हिसाब से ट्रेनिंग होगी. कुछ महीनों से लेके एक साल तक की ट्रेनिंग होगी, एक साल दो साल, और समटाइम्स यू वर्किंग और साथ में पढ़ाई भी होगी. उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल सकती है, आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना, जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ट्रेड क्वालिफिकेशन या टर्शरी क्वालिफिकेशन. उसी हिसाब से डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा कैटेगरी चूज किया उसी हिसाब से वो मिलेगी. उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होगी ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से पोस्टिंग होगी. अगर आप ऑफिसर की ट्रेनिंग करनी हो तो अगर एक तो है अगर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी जाके कर सकते हैं, पर वहाँ जाने से पहले आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है. तो वहाँ पे होगी 5 मंथ्स की फुल ऑफिसर की ट्रेनिंग. तो उसके बाद फिर अगर आप पहले से आप ग्रेजुएट हो तो उसी हिसाब से आपकी कैटेगरी ट्रेनिंग होती है. अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो थोड़ा आपको सी गोइंग एक्सपीरियंस लेनी पड़ती है और फिर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी अपने 3 to 4 years डिग्री करने के लिए. तो उस तरीके से दोनों स्ट्रीम से नेवी ज्वाइन होती है.
तो कमला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये पूरे एक नए सेगमेंट के बारे में, नए सेक्टर के बारे में बात की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.